From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, ने टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से इस शनिवार की सुबह का सत्र ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह की गिरजा का 185th वार्षिक महासम्मेलन है। इसमें गिरजा के जनरल अधिकारियों और जनरल पद अधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडल गायक मंडली द्वारा होगा। गिरजे के सदस्य गिरजे के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे और पदाधिकारी द्वारा के विभिन्न क्षेत्रों के आए हैं गिरजे के अध्यक्ष से सलाह और निर्देश प्राप्त करेंगे के लिए। इसका प्रसारण बॉनम डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में हुआ है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल रिकॉर्डिंग प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor
अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ गिरजे के प्रथम अध्यक्षता में द्वारा सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
भाई और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 185वें आर्थिक अर्थवार्षिक अधिवेशन का स्वागत करते हैं और सदस्यों और मित्रों का जो यहां सम्मेलन केंद्र में और संसार भर में जहां कहीं भी भाग ले रहे हों का हार्दिक गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं।
President Thomas S. Monson.
अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन जो एक सम्मेलन के संचालन करता है ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने का कहा है। हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता को जो उपस्थित हैं का कृतज्ञ के अभिनंदन करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मार्क विल बर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन के अंतर्गत किया जाएगा। गायन मंडली ने इस अधिवेशन का आरंभ गाइडर्स फॉर द डे जो होगा गाकर किया और अब ये डोरी टू गॉड ऑन हारे करेगी और प्रारंभिक प्रार्थना अंदर मोदी डॉक्टर सत्तर के
पहले परिषद के द्वारा दी जाएगी।
जो आसमान में है, हम आपके सम्मुख आते हैं और इस जनरल सम्मेलन को आप देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भविष्यवक्ताओं के लिए, प्रोफेसर थॉमस एस मॉन्सन के लिए जो कि पहली अध्यक्षता में हैं। हम उनको सस्टेन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं गॉस्पेल के पुनरुत्थान के लिए और उन चाबियों को जो अनुबंधों को बांधती हैं। हम धन्यवाद करते हैं बलिदान के लिए जो परमेश्वर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया और जिसके लिए हमें आशा मिलती है इस जिंदगी में और हमें हम पूरे संसार में जमा हुए हैं और उन संदेश को सुनने के लिए जो आसमान से लाए गए हैं हम सब के लिए। हर एक को आप अपनी आशीष दीजिए। जब हम अपने मनों को खोलते हैं और पवित्र आत्मा की आशीष से आपके आगे आते हैं, हम यही चाहते कि जो रेवलेशन के बीज हैं हमें मिले और हमें अच्छी ज़मीन पर गिरें और उनके अच्छे फूल हों और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
फिर हम अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता के पहले सलाहकार के कृपाकार सुनेंगे। उनकी टिप्पणी के बाद गायक मंडली Have I Done Any Good गीत गाएगी। गीत के पश्चात हम अध्यक्ष बॉयड के पैकर 12 प्रेरित के परिषद से सुनेंगे। उसके बाद बहन लिंडा के बर्टन सहायता संस्था के जनरल अध्यक्ष से।
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस अंतिम दिनों के यीशु मसीह के संतों का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन में आपके साथ प्रेम बढ़ाने के लिए यह आनंद की बात करते हैं। यह आनंद आत्मा की गवाही से आता है कि उद्धारकर्ता का प्रेम और आप सबों के पास और स्वर्गीय पिता के सभी बच्चों तक पहुँचे। हमारे स्वर्गीय पिता अपने सभी बच्चों को आत्मिक और सांसारिक आश्रय देने की कामना करते हैं। वह प्रत्येक जरूरतों उनकी पीड़ाओं और उनकी आशाओं को समझते हैं। जब हम किसी को सहायता पहुँचाते हैं उद्धारकर्ता उसे महसूस करते हैं जैसे कि हमने उनको सहायता पहुँचाई हो। उसने हमें बताया था कि वे सच था जब वह उसने भविष्य के क्षणों का विवरण किया था जो हम सभी के पास होगा जब हमें हमारे इस आंतरिक जीवन के पूर्ण होने के पश्चात उसे देखेंगे। मेरे मन में उस दिन का एक चित्र और दिनों के अधिक संजीव होता जा रहा है जैसे मैं इस सुभाग में क्या बोलना है जानने के लिए प्रार्थना और उपवास करता हूँ। प्रभु ने उस भविष्य में होने वाले उसके शिष्यों के साथ का सलाहकार वितरण किया दिया था और यह वर्णन करता है कि हम अपने पूरे हृदयों के साथ सहायता किया है। हम सभी के लिए जाना जरूरी है। तब राजा अपनी दाहिनी को बोलने वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ उस राज्य के अधिकारी और हो जाओ जो जगत के आदि के लिए तैयार किया गया है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था तुमने मुझे घर में ठहराया। मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए। मैं बीमार था तुमने मेरी सुंदी ली। मैं बंदीगृह में था तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे हे प्रभु हम कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया नंगा देखा कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह के देखा तुझ पे मिलने आए। तब राजा उसे उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। आप और मैं उद्धारकर्ता के गर्मजोशी के साथ अभिनंदन करने की कामना करते हैं परंतु हम कैसे उसके अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ पर और अधिक भूखे बेघर और स्वर्गीय पिता के अकेले बच्चे हैं। तब हम वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी पहुँच से अधिक संख्या हमारे पहुँच से पहले और बढ़ जाती है। तभी तो प्रभु ने हमें कुछ दिया है ताकि हम में से प्रत्येक कर सके। यह आज्ञा है कि उसे बच्चा भी समझ सकता है। यह एक अद्भुत वादा है उसके लिए जो जन्मंदर है उस और हमारे लिए। यह उपवास का नियम है। यशायाह की पुत्र पुस्तक में वचनों का प्रभु ने आज्ञा का विश्लेषण किया है और उसने गिरजे में आशीष उपलब्ध होती है जिसे उपवास में से प्रसन्न होता हूँ। वह क्या यह नहीं है कि अन्य से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उसे छुड़ा लेना और सब जुड़ा को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखे को बांट देना, अनाथ और हम और मरे मरे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब मेरा प्रकाश फटने की नहीं चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म मेरे तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेरे पीछे रास्ता करते चलेगा। तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करेगा और उंगली काट मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारकर्ता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश होगा और तेरा अंधेरा अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सच्ची हुई बरी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो प्रभु ने हमें साधारण आज्ञाएं अद्भुत वादों के साथ दी हैं। गिरजा आजकल के हमें महा में एक बार उपवास करने को मौका देता है और उद्धारकर्ता के साथ धर्मसक्ष या शाखा अध्ययन को दीन और जरूरतमंदों के लाभ के लिए उपवास भेंट दें। कुछ भी सहायता जो आपके आसपास है, शायद आपके स्वयं के परिवार में इसका इस्तेमाल करेंगे, परंतु मैं प्रभु के सेवक प्रार्थना और उपवास प्रतिकरण जानेंगे के लिए करेंगे कि किसकी मदद करें और या मदद दें। दीना के लिए उपवास की आज्ञा से जोड़ी गई आशीषें हैं। अध्यक्ष किम्बल उस नियम का अनुसरण न करने में सफल होना पाप के साथ भारी कीमत को चुकाना है। कहते हैं, वह लिखते हैं, प्रभु द्वारा बहुत से वादे उसके लिए जो उपवास और दिनों की सहायता करते हैं के लिए बनाए गए हैं। प्रेरणा भरे और आत्मिक मार्गदर्शन हमारे स्वर्गीय पिता के नेकता और के साथ नगजीत होने से आएगा। ऐसी नेकता ना करने में असफल होने उपवास की प्रक्रिया को इस आशीष से वंचित कर सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ऐसी आशीषों को पाया है। मैंने जनरल सम्मेलन खत्म हुआ और उसी सप्ताह के अंत में जो कि सामान्यतः उपवास और गवाही की सभा में शामिल होती है, मुझे किसी तरह से अब भी जो जरूरतमंद है उनका ध्यान रखना और आज्ञा का पालन करने में के लिए उपवास की प्रार्थना करनी चाहिए। शनिवार को अभी भी उपवास पर था। मैं सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना करने लगा। मैंने दुनिया भर की खबरों में देखा के लिए प्रभावित हुआ। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, तूफान ने बहुत से घरों को नष्ट कर दिया। पोर्ट विल्ला की राजधानी के सीधे उनकी मार पड़ी। मैं लगभग 6 लोग मर गए थे। पहले के पुष्टिकरण हो गया। यह तभी तक का बहुत शक्तिशाली तूफान था। स्पेसिफिक के चारों तरफ भाव तीव्र था कि वृक्ष और खड़े नहीं पा रहे थे कि आपातकालीन समूह के ने तूफान के खत्म होने का पश्चाताप क्षतिग्रस्त हुए सामानों का जायजा लेने की योजना बनाई थी। उनके कर्मचारियों को आशा थी कि तैयारी के लिए बहुत भुगतान होगा। उन्होंने साफ पानी, भोजन, कलम्बो, तरपतालों और छतों, स्वच्छता और रसोई किट का इंतजाम उचित स्थानों में तूफान आने से पहले कर दिया था। उन्होंने निवासियों के से मजबूत इमारतों में से विश्वविद्यालय और स्कूल में शरण ढूंढने की सलाह दी और तब उन्होंने उनसे सबसे मजबूत स्थान सीमेंट का मिला ने कहा था कि पास 5 की श्रेणी का तीव्र तूफान के सामने कोई भी स्थान जो टिका सके वह दृढ़ पानी कठिन है। जब मैंने उसमें पढ़ा कि घर की याद आई थी मैंने अपने मन को लोगों के घरों की आधी आंधी द्वारा नष्ट होने होकर समझ जाते हुए की कल्पना कर सकता हूँ। मैंने और उनके पड़ोसियों के बारे में हमारे सीमेंट कंस्ट्रक्शन चैपल के द्वार के बारे में सोचता हूँ। तब मैंने अध्यक्षता और सहायता समता अध्यक्ष के उनके बीच में घूमते, तसल्ली देते, कंबल देते, भोजन खिलाते और पानी पिलाते देखने का चित्रण करता हूँ। मैंने भयभीत बच्चों के एक साथ सिमटते हुए का चित्रण करता हूँ। वे घर में बहुत दूर थे जहाँ मैं रिपोर्ट को पढ़ता और अभी मैं जानता हूँ प्रभु उन अपने सेवकों के द्वारा क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ स्वर्गीय पिता अपने बच्चों की राहत के लिए क्या संभव करेगा। प्रभु ने के विषय को जो उसने दूर है परंतु प्रभु के निकट है उसके द्वारा उद्धारकर्ता की गई उपवास भेंट के द्वारा करता है। तो मैंने रविवार को इंतजार नहीं किया। मैंने अपनी उसी सुबह धर्मशक्ता को उपवास भेंट ले जाकर दी। मैं जानता हूँ कि भेंट का प्रयोग धर्मशक्ता और संस्था अध्यक्ष द्वारा मेरे ही किसी पड़ोसी की मदद के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, परंतु मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे प्रेरित होकर प्रभु के लिए जिन लोगों को प्रेम करते हैं के सहायक बनाने वाले होंगे। मेरी छोटी सी भेंट की शायद जहाँ मेरे परिवार और मैं रहते हैं के निकट आवश्यकता ना हो। आपकी उपवास भेंट शरीरों के लिए जीवन भोजन कपड़ों की मदद के कुछ अधिक करेगी। यह चंगाई और हृदय परिवर्तन करेगी। स्वेच्छा से दी गई भेंट का फल शायद देने वाले के मन की उदारकर्ता का पूर्वक उन तक जिन्हें इसकी जरूरत है पहुंच सकता है। यह सारे संसार में होता है। 1979 में सामाजिक युद्ध शुरू हुआ था। इससे सालों तक देश सहस रहा था। वैसे ही दुनिया में सबसे गरीब देशों में एक था। युद्ध के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि देश किसके नियंत्रण पर है। बैंक बंद, सरकारी दफ्तर बंद, पुलिस का दबदबा नहीं, विरोधी दलों के विरुद्ध था और वह यहाँ पर अव्यवस्था, कत्लेआम और दुख दर्द था। हजारों में लोगों की अपनी जाने गंवाई थी और 2 लाख से अधिक लोगों को कत्लेआम में बचने के लिए अपने घर छोड़कर जबरदस्ती जाना पड़ा था। यहाँ तक ऐसे समय में अंतिम दिनों के यीशु मसीह के संतघर बचता गया। पहली शाखाओं में से एक का संगठन जहाँ पर बहन तुरई रहती थी हुआ था। उसने पति श्रम शाखा अध्यक्ष थे। सामाजिक युद्ध के दौरान उन्होंने जिला के अध्यक्ष के रूप में सेवा की थी। यह शर्ट पहला कपड़ा मैंने पाया था और उसने काम पर जाते समय पहनी थी। यह बहुत अच्छी थी। यह मेरे बहुत खूबसूरत होने का एहसास देती है। मैं पास कोई और दूसरा कपड़ा नहीं था। युद्ध के दौरान इन कंबलों में हमें, मुझे और मेरे बच्चों को गर्म रखता था। जब विरोधी हम पर आक्रमण करते थे, यही सिर्फ एक चीज मेरे हाथ में आ पाई थी तो हम अपने साथ कंबल ले जा सके थे। इसमें हमें गर्म और मच्छरों को दूर रखा था। मैं मिशन अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया जिसने युद्ध वाले देश में अपना जेब से पैसा लेकर जाते हुए रास्ता बनाया था। वह कोष उपवास भेंट दान आप जैसे किसी ने भी दे सकते हैं। बहन तुरई ने अपने उसके लिए बोला था कि उदारता से दान देते हैं जिससे वह जीवित रह पाते थे। जब लोगों ने मेरे बारे में सोचती हूँ तो ऐसा करते हैं। मैं महसूस करती हूँ परमेश्वर द्वारा भेजा गया है, क्योंकि आम इंसान हमारे लिए इस तरह को काम नहीं करता है। कुछ ज्यादा समय पहले नहीं, संयुक्त राष्ट्र का सम्मोहन एबी के साथ बैठ के था। उन्होंने अच्छे ने निशानों के साथ टिप्पणी लिखी गई थी। कुछ फटे हुए थे, कवर अलग हुआ था। उन्होंने धर्मशास्त्र को अपने हाथ में लिया और आराम से पेज पलटने लगा। जैसे वह करता गया, दशमांश की पीली पर्ची मिली। मैं देखकर कह सकता था कि सोने का था। ने एक डॉलर अपने सपना अपना दशमास देती $1 मिशनरी कोष में और $1 को उपवास भेंट के रूप में देती। उसके लिए उनके शब्दों में जो सच में दीन होते हैं।
Had paid $1 as her tithing, $1 to the missionary fund, and $1 as a fast offering for those who, in her words, were truly poor. The visitor closed Sister Torrey's scriptures.
मोहन के बहन थोरी के धर्मशास्त्रों को बंद किया और सोचने लगा, जैसे वह इस अफ्रीकन माता के साथ खड़ा था और पवित्र भूमि पर खड़ा हो, जैसे आपकी और मेरे उपवास भेंट का आशीषों के रसीद के हृदयों में परिवर्तन हो सकता है, तो उपवास दूसरों की अच्छाइयों के लिए करें, जहां तक कि एक बच्चा भी महसूस कर सकता है। बहुत से बच्चों और बहुत कुछ बड़े को भी व्यक्तिगत कारणों के कारण 24 घंटे का उपवास रखने के लिए कठिनाई होती है। ये यशाया के शब्दों में मसूया किया कि उपवास उनके आत्माओं को यातना दे सकता है। बुद्धिमान अभिभावक उसे संवाददाता से पहचानते हैं और अध्यक्ष जोसेफ एफ स्मिथ की सलाह को ध्यानपूर्वक अनुसरण करते हैं। बेहतर है उन्हें सिद्धांत की शिक्षा दी जाए, उनका ध्यान रखा जाए। मैंने हाल ही में उस सलाह को की आशीष को देखा जब मेरे पोते 24 घंटे का उपवास के क्षमता की समर्था से पूरा परे था को करना था। उसके स्कूल के एक मित्र ने एक युवा चचेरे भाई को असमिक मृत्यु का खोया था। मेरे पिता ने अपने माता के से उपवास के दिन पूछा। समय समय पर वह अक्सर उपवास रखने में बहुत ही कठिनाई को महसूस करता था, भले ही यह उसके दुखी मित्र को बेहतर महसूस कराए यदि वह उपवास रखना चाहेगा। उसका प्रश्न अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ की सलाह की पुष्टि करता है। मेरा पोता सही निर्णय पर आता है, जहां वह न सिर्फ उपवास के सिद्धांत को समझता है, परंतु जिसको उसके हृदय को बोया गया था, वह जन पाया था कि उसके उपवास और प्रार्थना किसी जरूरतमंद के लिए परमेश्वर की आशीष हो सकती है। यदि वह सिद्धांतों को अक्सर पालन करें, वह अपने दुख के जीवन में प्रभु द्वारा वादा किए गए अद्भुत प्रभाव के असर को ला सकेगा। उसके पास आत्मिक शिशु आशीषों की शक्ति के प्रेरणा और लालच से बचे रहने की महान योग्यता को पा सकेगा। हमारे संक्षिप्त समय, हमारे छोटी सी राशि हम दान दीन के लिए दे सकते हैं, जो सिर्फ हमारे स्वभाव को थोड़ा सा परिवर्तन का भाग होगा, कभी बुरा न करने की कामना को लाता है। हम कारणवश प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, जरूरतमंदों के लिए दान कर सकते हैं, तब तेरा प्रकाश फटने के समान हो चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, यहोवा का तेरा पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दिहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें उन महान आशीषों को स्वयं और अपने परिवार के लिए हासिल करने। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह है, कि उसके गिरजे में हमें उसकी मदद के लिए निमंत्रण किया है, जैसे वह दिनों और अपनी तरीके से ध्यान रखता है और हमारी मदद और अनंत आशीषों का ध्यान आने का वादा देता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
many years ago,
कई वर्ष पूर्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद मैं कॉलेज में अध्ययन कर रहा था. जब डोना स्मिथ से मिला था उस समय मैंने पढ़ा था कि सफल विवाह के लिए कुकी और किस आवश्यक है. मैंने सोचा ये एक तो बहुत अच्छी बात है. मैं सुबह कॉलेज जाता और शाम को अपने पिता की गैराज में काम करने ब्रिगम सिटी जाता था. डोना की सुबह की आखिरी क्लास गृह विज्ञान की होती थी. मैं जाने से पहले उसकी क्लास के बाहर रुकता था. क्लास के दरवाजे पर अपारदर्शी कांच की खिड़की थी जिससे अंदर दिखाई नहीं देता था, लेकिन यदि मैं खिड़की के निकट खड़ा होता वह मेरी परछाई देख सकती थी. वह चुपके से बाहर निकलकर कुकी और किस देती थी. इसके बाद जो हुआ वह सब को पता है. हमारा विवाह सॉल्ट लेक टेम्पल में हुआ और उसके बाद हमारे जीवन की साहसिक यात्रा शुरू हुई. पिछले कुछ वर्षों में मैंने अक्सर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया है. गिरजे में सभी गतिविधि का परिणाम यह सुनिश्चित करना है कि एक पुरुष और एक महिला अपने बच्चों के साथ घर में सुखी है और समय और अनंतता के लिए एक साथ मोहरबंद हुए हैं. आरंभ में परमेश्वर आदमी को अपने स्वरूप बनाने के लिए नीचे गए. परमेश्वरों के स्वरूप में उन्होंने उसे बनाया. पुरुष और महिला को उन्होंने बनाया और परमेश्वर ने कहा हम उन्हें आशीषित करेंगे और परमेश्वर ने कहा हम उन्हें फलने फूलने और वृद्धि करने और पृथ्वी को भरने इस पर शासने करने के लिए कहेंगे. और मानव जीवन का चक्र इस पृथ्वी पर आरंभ हुआ जब आदम अपनी पत्नी से मिला और उसने उसके पुत्र और पुत्रियों को पैदा किया और वे वृद्धि करने और पृथ्वी को भरने लगे. और आदम के पुत्र और पुत्रियां प्रदेश में जोड़ों में बट गए और उनके भी पुत्र और पुत्रियां हुए. वृद्धि करने और पृथ्वी को भरने की आज्ञा कभी भी निरस्त नहीं की गई है. यह मुक्ति की योजना में बहुत महत्वपूर्ण है और मानवीय सुख का स्रोत है. इस शक्ति का पवित्र उपयोग करके हम स्वर्ग में अपने पिता के निकट आ सकते हैं और आनंद की परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं. परमेश्वरता भी प्रजनन की शक्ति सुख की योजना का महत्वपूर्ण भाग नहीं है अपितु ये सुख पाने के लिए अति महत्वपूर्ण है. मानव जाति में साथी पाने की इच्छा अनवरत और बहुत मजबूत होती है. नश्वर जीवन में हमारा सुख हमारा आनंद और उत्कर्ष इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे इन दृढ़ बाध्य करने वाली इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं. जब प्रजनन की शक्ति किशोर और किशोरियों में पनपने लगती हैं तब प्राकृतिक तरीके से अन्य शारीरिक अनुभव से भिन्न अति व्यक्तिगत अनुभूतियां होने लगती हैं. आदर्श रूप से साथी की चाहत की शुरुआत प्रेम प्रसंग के साथ होती है. यद्यपि परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, इसमें किसी कहानी के नायक और नायिका के समान उत्तेजना और प्रत्याशा यहाँ तक कि अस्वीकृति की अनुभूतियां होती हैं. इसमें एक युवक और युवती के बीच चांदनी रात और गुलाब के फल प्रेम पत्र प्रेम गीत कविता हाथों में हाथ प्यार की अभिव्यक्ति के अन्य भाव होते हैं. प्रेमी जोड़े आसपास की दुनिया को भूलकर अपने आप में खो जाते हैं और वे आनंद की अनुभूतियों का आनंद लेते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि युवा रोमांटिक प्रेम और का पूर्ण विकसित उत्साह उन संभावनाओं का परिणाम है जो प्रजनन की शक्ति से आती है, तो आपने लंबे समय तक चलने वाले विवाह की निष्ठा और सुख के आनंद को भी नहीं देखा है। विवाहित दंपतियों की प्रलोभनों, गलत फहमियों, आर्थिक समस्याओं, परिवार संकटों, बीमारियों के द्वारा परीक्षा होती है और इन सब अनुभवों के चलते प्रेम अधिक मजबूत होता है। सच्चे प्यार में आवश्यक है कि जब तक विवाह नहीं हो तब तक ऐसे प्रेम संबंधों को स्थापित न किया जाए जिसमें प्रजनन की पवित्र शक्तियों का उपयोग होता है। इसका अर्थ है उन परिस्थितियों से बचना जिसमें शारीरिक इच्छा हावी हो सकती है। पवित्र प्रेम जानता है कि केवल साथी के प्रति अनंत वफादारी की शपथ, वैध और विधि सम्मत समारोह और आदर्श रूप से मंदिर में मुहरबंद होने के बाद ही इन प्रजनन शक्तियों उपयोग किया जाना परमेश्वर की निगाह में प्रेम की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसे केवल और केवल उसके साथ बांटा जाना चाहिए जो हमेशा का साथी हो। जब ये संबंध योग्यता के से स्थापित किए जाते हैं तो इसमें अति उत्तम और उत्कृष्ट शारीरिक भावना और शब्द प्रेम से जुड़ी आत्मिक अनुभूतियां सम्मिलित हो जाती हैं। संपूर्ण मानवीय अनुभव में जीवन के इस हिस्से की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ना ही इसके जैसा कोई है। ये अनंत काल तक कायम रहता है यदि अनुबंध बनाए और पूरे किए जाते हैं, क्योंकि इसमें पवित्र पौरोहित्य की कुंजियां प्रदान की जाती है ताकि आप सम्मान और महिमा प्राप्त करो। ये महिमा परिपूर्ण और वंश में हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगा। लेकिन रोमांटिक प्रेम अधूरा है, ये एक प्रारंभ है। बच्चों के आने से प्रेम विकसित होता है जो प्रजनन की उस शक्ति से रचे जाते हैं जो विवाह में दंपतियों को सौंपी जाती हैं। गर्भ विवाहित पति और पत्नी के बीच प्रमोलिंगन द्वारा धारण होता है, प्रेमालिंगन द्वारा धारण होता है। शानदार जटिल तरीके से एक सूक्ष्म शरीर आकर लेने लगता है। बच्चे का जन्म चमत्कार रूप से होता है अपने संसारिक माता पिता के स्वरूप में। उसके नश्वर शरीर के भीतर एक आत्मा आत्मिक बातों को महसूस और समझने के योग्य होती है। बच्चे के अविकसित नश्वर शरीर में अपने स्वयं के स्वरूप में संतान पैदा करने की शक्ति होती है। आत्मा और शरीर मनुष्य के प्राण हैं और पालन करने के लिए आत्मिक और शारीरिक नियम हैं यदि हम सुखी होना चाहते हैं। अनंत नियम हैं जीवन देने की इस शक्ति सहित जिन्हें इस संसार की रचना से पहले अपरिवर्तनीय रूप से स्वर्ग में लागू किया गया है था, जिन पर सभी आशीषें आधारित हैं। ये ऐसे आत्मिक नियम हैं जिन पे मानव जाति के नैतिक आदर्शों को परिभाषित करते हैं। ऐसे अनुबंध हैं जो अनंत आशीषों की प्रतिज्ञा को बांधने, मुहरबंद और सुरक्षित करने और देने की प्रतिज्ञा करते हैं। अल्मा ने अपने बेटे शिबलोन को सलाह दी थी, देखो कि तुम अपने उत्तेजनाओं पर काबू रख सको कि तुम प्रेम से परिपूर्ण हो सको। लगाम का उपयोग मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। हमारी लालसाओं पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। जब प्रजनन की शक्ति का उपयोग वैध रूप से किया जाता है तभी आशीष देगी और पवित्र करेगी। प्रलोभन हमेशा रहे हैं, क्योंकि शैतान जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए वह उन सब से जलता है जिनके पास ये स्वर्गीय शक्ति है। वह और जिन्होंने उसका अनुसरण किया था उनका बहिष्कार कर उन सब से नश्वर शरीर पाने के अधिकार को छीन लिया गया था। वह चाहता है कि सभी मनुष्य उसके स्वयं के समान दुखी हों। वह इस भंग भ्रष्ट और यदि संभव हुआ नष्ट करने के लिए प्रलोभन देगा, यदि वह दे सका तो, ताकि यह उपहार जिसके द्वारा यदि हम योग्य रहते हैं तो आनंद वृद्ध प्राप्त करेंगे। यदि हम अपनी प्रजनन की शक्ति को दूषित करते या दूसरों को उल्लंघन करने के लिए उकसाते हैं तो इसके लिए इतना कठोर और असहनीय दंड मिलेगा जिसके समक्ष सभी शारीरिक आनंद फीके पड़ जाएंगे। अलमा ने अपने बेटे कोरिंटम से कहा था, मेरे बेटे क्या तुम नहीं जानते कि ये बातें प्रभु की नजर में घृणित हैं? हाँ, किसी मासूम का लोह बहाने या पवित्र आत्मा को अस्वीकार करने के अलावा ये सारे पापों से बड़ा पाप है। जब हम पाप करते हैं तो उसके दंड से नहीं बच सकते। प्रजनन की शक्तियों का व्यक्त करने का एकमात्र वैध अधिकार उन पति पत्नी को है जिनका विधिवत विवाह हुआ है। इसके अलावा इसका उपयोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। शैतान के भयंकर प्रलोभन में ना फंसें, क्योंकि प्रत्येक उल्लंघन की कीमत कौड़ी कौड़ी देकर चुकानी पड़ सकती है। परमेश्वर की महानता और अनुग्रह कहीं भी इतनी अधिक प्रकट होती नहीं जितनी पश्चाताप में। हमारे शारीरिक शरीरों को जब चोट लगती है तो ये स्वयं को ठीक करने की सक्षम होते हैं, कभी कभी डॉक्टर की मदद के द्वारा। यदि नुकसान अधिक होता है तो चोट की निशानी के तौर दाग रह जाता है। हमारे आत्मिक शरीरों के साथ मामला कुछ भिन्न है। जब हम गलतियां और पाप करते हैं तो हमारी आत्माओं को आघात पहुंचता है, लेकिन नश्वर शरीरों से भिन्न जब पश्चाताप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण कोई दाग नहीं रहता। ये प्रतिज्ञा है कि जब व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, और प्रभु कहता है कि मैं उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखता। जब हम विवाह और पारिवारिक जीवन के विषय में बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में आता है, अपवादों का क्या होगा? कुछ बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, कुछ निर्दोषों के विवाह उनके साथी के धोखे के कारण टूट जाते हैं, अन्य विवाह नहीं करते और अविवाहित रहते हुए योग्यता का जीवन जीते हैं। अब मैं ये दिलासा देता हूँ, परमेश्वर हमारा पिता है। सारा प्रेम और उद्धारता जो एक आदर्श सांसारिक पिता में प्रकट होती है उससे कहीं बढ़ चढ़कर उसमें है जो कि हमारा पिता और हमारा परमेश्वर है। उसे समझना नश्वर मन की क्षमता से परे है। उसके फैसले न्याय संगत है, उसके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। कमी पूरी करने की उसकी क्षमता की तुलना नहीं की जाती जा सकती। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे होंगे हैं। अब आदर के साथ मैं शब्द मंदिर उपयोग करूंगा। मैं देख सकता हूं एक मोरबंदी कक्ष और एक वेदी विवाह, एक वेदी जहां एक युवा जोड़ा घुटने के बल झुका है। मंदिर की यह रीति विवाह से कहीं बढ़कर है, क्योंकि यह विवाह पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के से मुहरबंद किया जा सकता है और धर्मशास्त्र बताते हैं कि हमें सिंहासन, राज्य, रियासत और शक्ति शासन मिलेगा। मैं उस आनंद को देखता हूं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो इस स्वर्गीय उपहार को स्वीकार करते और योग्यता इसका उपयोग करते हैं। बहन डोना स्मिथ पार्कर और मैं विवाह के लगभग 70 वर्षों से एक दूसरे के साथ साथ रहे हैं। जब मेरी पत्नी हमारे बच्चों की माँ की बात होती है, मैं अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अनुभूति इतनी गहरी और आभार इतनी शक्तिशाली है कि मेरे लिए इसे व्यक्त करना लगभग कठिन है। इस जीवन और आने वाले जीवन में महानतम उपहार जो हमें मिला है हमारे बच्चे और नाती पोते हैं। अपने नश्वर जीवन के अंत के निकट मैं अपनी पत्नी के साथ प्रत्येक क्षण का आभारी हूँ और इस प्रतिज्ञा के लिए जो प्रभु ने दी है इसका कोई अंत नहीं है। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है, वह इस गिरजे का मुख्य है। उसके प्रायश्चित और पौरोहित्य की शक्ति के द्वारा परिवार जो पृथ्वी पर आरंभ होते हैं अनंत काल तक बने रह सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
That means that no matter what we've done, or where we've been, or how it was, if we truly repent, He has promised that He would atone. And when He atoned, that settles that. There are so many of us who are thrashing around, as it were, with feelings of guilt, not knowing quite how to escape. You escape by accepting the atonement of Christ and all that was that might be heartache can turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful for the blessings of the Lord Jesus Christ, for the power of procreation, for the power of redemption, for the atonement which can wash clean every stain, no matter how difficult or how long or how many times repeated, the atonement can put you free again to move forward cleanly and worthily to pursue that path that you have chosen in life. I bear witness that God lives, that Jesus is the Christ, that the atonement is not a mad thing that's for the whole church. The atonement is individual. And if you have something that's bothering you, sometimes so long ago you can hardly remember it, put the atonement to work. It will clean it out. And you, like He, will remember your sins no more. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Next to the inspiring talks, music, and prayers that always touch our hearts during General Conference,
जनरल सम्मेलन में हमेशा हमारे हृदय को छूती हैं। मुझसे कई बहनों ने कहा कि उन्हें क्या अति प्यारा लगता है प्रथम अध्यक्ष अब 12 प्रेरितों को देखने, जैसे वे पोडियम में उनके अनंत साथी के साथ बैठते हैं और हम सभी भाइयों को कोमलता से उनके लिए प्रेम को व्यक्त करना आनंदित लगता है। अपनी पत्नी डोना के विषय में बोलते हुए अध्यक्ष बोयट के पाकर ने कहा, क्योंकि जिस पद को मैंने ग्रहण किया है मुझे विविध आभार से सच कहता है वह संपूर्ण है। वह मेरे लिए जीवन की सूर्य किरण है। अध्यक्ष टियर उपडॉफ ने अपनी पत्नी हैरियट के लिए कहा था। अध्यक्ष हेनरी बी आयरन ने अपनी पत्नी कैथलीन के संदर्भ में कहते हैं, यह वह इंसान है जो मुझे हमेशा अति बेहतर बनाना चाहते हैं जो कि मैं हो सकता हूँ। और अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन उनकी प्रिय फ्रांसिस के लिए बोलते हैं, वे मेरे जीवन का प्रेम थी, मेरे भरोसा अविश्वास पात्र और मेरी नजदीकी दोस्त थी। मैं कहना है कि मैं उनकी कमी को महसूस कर रहा हूँ, मेरे गहरे भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। मैं भी मेरे प्रिय को मेरे प्रिय साथी के लिए व्यक्त करना चाहूंगी। क्रेक वह मेरे लिए अनमोल उपहार है। मेरे पति की ओर इशारा करते हुए मेरे कुलपति आशीष में वह एक मोहित करने वाला एक पवित्र अभाव है कि मेरा जीवन और मेरे बच्चों की जिंदगी उसके रखरखाव में रहेंगी। मेरे लिए यह साफ है कि उस वजह को पूरा कर रहे हैं। मार्क ट्वेन के शब्दों में कहती हूँ कि क्रेक के बिना जीवन में भी जीवन क्या होगा। मैं उनसे प्यार दिल और आत्मा से करती हूँ। आज मैं पतियों, पिताओं, भाइयों, बेटियों और अंकलों का आदर करना चाहूंगी जो जानते हैं कि क्या है। वे अपना उत्तम देख परमेश्वर के लिए भूमिका को कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर घोषणा में पूर्ण किया हुआ है और उनके लिए और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कृपया जाने कि मैं दुखिता से जानती हूँ कि पितृत्व, मातृत्व और विवाह का शीर्षक बहुतों को परेशान कर सकता है। मैं जानती हूँ कि कुछ गिरजा के सदस्यों को एहसास हो रहा होगा कि उनके घर वहाँ जहाँ वहाँ अनुमान लगाते हैं वह कभी पहुँच नहीं सकेंगे। बहुतों को नाराज अपशब्द लगते और गलत परंपरा और संस्कार के कारण आघात पहुंचा हो। मैं साफ नहीं कहती हूँ पुरुषों और औरतों को जो अपने घरों में जानबूझकर या अनजान में दर्द, वेदना और निराशा कर सकते हैं, परंतु आज मैं कुछ बहुत कहना चाहूंगी। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पति अपने पत्नी के लिए अधिक आकर्षक नहीं होते जब वे परमेश्वर की दी हुई भूमिका पर सेवा करते हैं, जैसा एक योग्य पुरोहित आधार करता है। अधिक महत्वपूर्ण है घर में। मैं अध्यक्ष बेकर के योग्य पति और पिता के इन शब्दों को विश्वास करती हूँ। घर के पास अपने भविष्य को सुरक्षित करने को प्रभु की सीधी दी हुई पुरोहित शक्ति है। यहाँ पर ऐसा समय भी होगा कि जब वे सभी अपने परिवार के बीच ढाल बनकर विरोधी की अनिष्ट शक्ति के सामने उस समर्थ को खड़े रहेंगे। इस साल के शुरू में मैंने एक असाधारण व्यक्ति की अत्येष्ट में भाग लेने के लिए गई थी। मेरे पति के अंकल डॉन के बेटे ने अनुभव किया। वह जब छोटा बच्चा था, ठीक के उसके पिता ने उनके लिए वह घर खरीदा जो कि बटा था। पांच बच्चों को खिलौना और पहचानने के कारण उनके पास यार्ड में बेड़ा डालने के लिए पैसा नहीं था। अपने परिवार की सुरक्षा प्रदान करने की अपनी पवित्र भूमिका को निभाते हुए अंकल डॉन ने बड़े बेटे को छूटे को जमीन पर कुछ रस्सी और खूंटे यार्ड के चारों तरफ लगाए थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया था। उन्होंने उन्हें को खूंटे और रस्सी को दिखाकर और उन्हें समझाया कि यदि वे इस बनाए हुए खूंटे के भीतर रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे। एक दिन भेंट करने वाले शिक्षकों ने अविश्वास से देखा जैसे वह उस घर की ओर बढ़ रही थी और देखा पांच बच्चे रस्सी के ठूर पर आज्ञाकारी के साथ खड़े थे, गोंद कुसीमा से बाहर रास्ते पर पड़े देख रहे थे। एक छोटा बच्चा भागकर अपने पिता को लेने के लिए गया जो भागकर पुनः गेंद ले आए थे। अत्यंत के पश्चात बड़े बेटे ने आंसुओं के साथ बताया कि अपने जीवन में सिर्फ यही आशा थी कि वह अपने पिता की तरह बने। अध्यक्ष एज ऑफ बेंसन ने कहा था, ओ इसराइल में पिता और पिता, तुम अपने परिवारों के लिए उदाहरण और उत्कर्षता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसराइल में अपनी पवित्र बुलावट को पिता के रूप में स्मरण करो। तुम्हारी अत्यंत बुलावट समय और अनंतता के लिए एक बुलावट जिससे तुम कभी मुक्त ना होंगे। तुम्हें एक घर की रचना करनी है जहाँ प्रभु की आत्मा रह सकती है। कितना लागू होता है वह भविष्य की शब्द के लिए। यह आवश्यक कठिन हो अच्छे के लिए संसार में अनुबंध पुरुषों को जानने के लिए, ना केवल अनेक उनके पवित्र अनुबंधों जिम्मेदारियों को अर्थहीन करने के लिए, परंतु व्यवस्थित पुरुष का यह अर्थ होता है कि गलत संदेश भेजकर भी एक गलत संगीत, ये सब मेरे बारे में है। पैमाने की दूसरी तरफ अपमानजनक और मजाक उड़ाने वाला संदेश के पति और पिता की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि शैतान के झूठ को ना सुने। वह अपने पति या पिता बनने के पवित्र अपशब्दों को शुद्ध करता है क्योंकि वह ईर्ष्या करते हैं उनसे जिनके पास पवित्र भूमि है। वह सभी को बुरा नहीं करेगा। उसका उद्देश्य सारा मानव उसी की तरह आशाहीन हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे की जरूरत है, जैसा अनुबंध पुरुषों और स्त्रियों हमें एक दूसरे को उन्नति करना है और एक दूसरे को प्रभु के लोग बनाने में हमें सहायता करनी है, जैसा हम कहेंगे, और हमें एक साथ काम करके नए वंश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उनके पवित्र भाग्यता तक पहुंचाने में हमें, जैसा कि अनंत जीवन की उत्तराधिकारी को मदद करनी है, हम भी वैसा करें जैसा एल्डर रॉबर्ट डी हॉल्स और उनकी पत्नी मैरी ने किया और कहावत के का अनुसरण किया, तुमने मेरी उन्नति को और मैं तुम्हारी उन्नति को एक साथ करूंगा। हम धर्मशास्त्र को जानते हैं कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तभी तो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए एक बनाया जो हमसे मेल खाता हो। मेल खाता मुहावरों का अर्थ है एक मेल खाता सहायता योग्य और उनसे बातचीत करे। उदाहरण के लिए हमारे दोनों एक दूसरे के समान हैं, परंतु एक समान नहीं है, परंतु वह मैं एक एकदम भिन्न है, परंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं, मेल खाते हैं, एक साथ शक्ति हो सकते हैं। पाठ में परिवारों के बारे में है। गिरजा की हैंडबुक में यह बयान है कि पुरुषों और आत्मा ऐसी है कि हम वे एक दूसरे को पूरक करते हैं। कृपया नोट करें कि वह कहती है एक दूसरे के पूरक ना हो कि हमारे एक दूसरे से मुकाबला करना। हम यहाँ मदद करने, ऊपर उठाने और एक दूसरे के साथ प्रसन्न होने के लिए हैं। जैसा हम अपने आप को उत्तम बनाने की कोशिश करते हैं, बहन बाबरा स्मिथ ने सिखाया, यहाँ पर बहुतायत से अधिक प्रसन्नता है जब हम दूसरों की सफलता में आनंद बना सकते हैं और ना कि केवल स्वयं के। जब हम पूरक होना बढ़ते हैं कि जब मुकाबला करने का यह बहुत ही आसान है एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। मैं जब कोई छोटी बच्ची की युवक माँ थी, एक दिन ड्राइवर बर्तन धोने और अनुशासन करने में ना कोई प्राथमिक गीत को सुनाने में मुझे बड़े प्रसन्नता होती है। पिता के घर आते ही मुझे बुरा लगा कि मैं सदा खुश नहीं रहती। जब ग्रेक दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उछाल कर दरवाजे पर आते हैं, वे हमेशा हम सबको गले लगाकर और चुम्बन देकर कहते हैं कई परेशानियों और कभी कभी बुरा दिन को भी पिता खुश का एक समय बना देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम कम काम के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, अभी और करना है, अधिक ध्यानपूर्वक देखती है, जैसे कि वह कहते हैं कामों को और जो अधिक होते हैं। मैं अक्सर रोक कर और परिवार का पवित्र आनंद समय लेती, उनका अब तक ध्यान करती कि हमें जीवन को आशीष करने के लिए। अधिक समय पहले नहीं, गिरजा की एक विश्वास बहन ने मेरे साथ एक गंभीर अपनी चिंता को बांटा था, जिसके लिए वह कुछ समय से प्रार्थना कर रही थी। उसकी चिंता उसके वार्ड के कुछ बहने थी। उसने बताया कि उसका समय हृदय कटने की दुख है, यह देखकर कि वह कभी अपने पहली बार मैंने कब अपने साथी की सच में सराहना, चाहे अकेले में चाहे बच्चों की उपस्थिति में, पिछली बार मैंने कब धन्यवाद किया, प्रेम दिखाया था, विश्वास की उनके लिए गंभीरता से प्रेम की थी। मैंने यह जानते हुए कि उनसे चोट पहुंची जब पहली बार मैंने अपने आप को गलत कहने से रोका था, मैंने पहली बार करने के लिए विनता के साथ माफी मांगी थी बिना कुछ कहे, लेकिन यदि केवल तुम कहो या लेकिन यदि केवल तुम ना चाहो। पिछली बार मैंने कब खुश रहना चुना था, ना कि सही हूँ की मांग की थी। अगर इनमें से कोई प्रश्न आपको तड़पने या उदास को उभास का एहसास की और ले जाता है, यदि रखे कि याद रखे कि एल्डर डेविड ने सिखाया कि हमारे आत्मा में दोष हमारे शरीर का दर्द होता है, एक चेतावनी और एक अतिरिक्त नुकसान से सुरक्षा होती है। मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि एल्डर जोफर एल हॉलैंड दिल से सुनने की याचिका करती हूँ। भाइयों और बहनों, इस लंबे आनंद के लिए उधार के सामने बनाना तलाशना हम यदि आदमी और औरत बनने की कोशिश करते हैं तो कम से कम इस तरह शब्दों से उल्लंघन ना करने के द्वारा या अधिक अतिक्रम होना कई भाषा दूतों की भाषा के साथ बोलने के द्वारा। जैसा मैं आज इस अवसर की तैयारी कर रही थी, आत्मा ने मुझे सिखाया कि और मैं तो दयालु और अधिक में मेरी प्रिया और उस विषय में भाषा के लिए उधर कुछ वचन की थी। मेरे परिवार में व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और उनके परिवार और संपूर्ण भूमिकाओं को करने के लिए आभार करती हूँ। मैं वचन करती हूँ कि कहावत के अनुसार करने की तो तुमने मेरी उन्नति की और मैं तुम्हारी उन्नति करता हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे विश्वास यीशु और प्रायश्चित के साथ करता है कि हम कहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना भरोसा उस पर रखकर जी वह चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़ी होकर गाएगी हाई ऑन द माउंटेन टॉप। गीत गाए जाने के बाद हम एल्डर डेलिन एचोक्स 12 प्रेरितों के परिषद से सुनेंगे। एल्डर एल डब्ल्यू विटनी क्लेटन 70 के परिषद फिर हमारा संबोधन करेंगे। एल्डर क्लेटन की टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी कम अन टू जीसस।
This is the 185th annual General Conference.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजा का 185th अर्थवार्षिक महासम्मेलन है।
Subjects for general conference talks are assigned.
जनरल सम्मेलन के लिए वार्ता के विषयों को नश्वरता के अधिकार द्वारा नहीं परंतु आत्मा के प्रभाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। बहुत से विषयों का सुझाव मानव संबंधी द्वारा होते हुए हम सब बांटते हैं, परंतु जैसे यीशु ही नहीं सिखाते नश्वरता की चुनौतियां या उसके दिनों की राजनीति दमन से कैसे उभरा जाता है। वो अक्सर अपने सेवकों को उसके विषय में क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है कि उसके अनुयायी अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार कर अपने स्वर्गीय घर में लौटने की तैयारी कर सकते हैं। मैं बहुमूल्य और समय रहित यीशु के एक दृष्टांत की शिक्षा के बारे में बोलने के लिए प्रभावित हुआ हूँ। बोलने वाले का दृष्टांत सभी तीन सुसमाचारों में एक सबसे छोटा दृष्टांत कहा जाता है। इसे यहाँ तक कि एक सबसे छोटे समूह के दृष्टांतों को यीशु अपने शिष्यों को समझते हैं। बीज जो बोया गया था राज्य का वचन वचन या परमेश्वर का वचन स्वामी की और उसके सेवकों की शिक्षाएं हैं। बीजों को विभिन्न मिट्टियों पर गिरने विभिन्न तरीकों को दर्शाता है जिसमें मानव इन शिक्षाओं को ग्रहण कर अनुसरण करते हैं। अतः बीज जो कि रास्ते के किनारे गिरते हैं वो नश्वर मिट्टी तक नहीं पहुंच पाते जहां उनके उगने की संभावना होती है। ये इस तरह से है जो हृदय कठोर है पर या नहीं है को शिक्षाएं दी जाती हैं। मैं इसके विषय में और अधिक नहीं बोल सकूंगा। मेरा संदेश हम में से उनसे संबंधित है जो मसीह का अनुसरण करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें उद्धारकर्ता की शिक्षाओं के साथ जैसे हम अपना जीवन जीते हैं क्या कर सकते हैं। बोलने वाले का दृष्टांत परिस्थितियों और व्यवहारों की हमें चेतावनी देता है जो कि किसी भी सुसमाचार संदेश को प्राप्त करते हैं के आगे ईश्वरीय फल लाता है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल उगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। यीशु सिखाते हैं कि ये उनका वर्णन है जो ये वो वहां जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। सुनने वालों को अपने भीतर जड़ न रखने के क्या कारण होते हैं? यही नए सदस्यों की परिस्थिति होती है जो केवल प्रचारकों द्वारा या गिरजा की छवियों पर आकर्षित होते हैं या गिरजा की सदस्यता के बड़े बड़े कामों को देखकर परिवर्तित होते हैं। वचनों की जड़ से नहीं होते। जब विपत्तियां आती हैं वे तेजी से घायल होकर और ताजगी खोकर दूर हो जाते हैं लेकिन यहाँ तक जो गिरजा में पले बड़े होते हैं लंबे समय से सदस्य रहे भी परिस्थिति में फिसल कर निकल सकते हैं जहां उनके अपने भीतर जड़ नहीं होती है। मैं ऐसे ही बिना दृढ़ता और अंत तक न रहने वाले यीशु मसीह के सुसमाचार से परिवर्तित कुछ सदस्यों को जानता हूं। यदि हम सुसमाचार की शिक्षाओं से और रोजाना उसके अभ्यास करने की जड़ों से नहीं जुड़े हैं हम में से किसी का हृदय कठोर बन सकता है जो कि आत्मिक बीज के लिए पथरीली भूमि है। आत्मिक भोजन आत्मिक लोगों के लिए आवश्यक है विशेषकर संसार जो परमेश्वर के विश्वास से और सच में यही गलत से दूर होता जा रहा है। इस युग में इंटरनेट शासन करता है जो संदेशों को बढ़ाता है जिससे विश्वास लड़खड़ाता है। हमें अपने आत्मिक सच्चाई से अवगत कराना चाहिए हमारे विश्वास को बल देते और सुसमाचार से जुड़े रहना चाहिए। युवा लोगों यदि ये शिक्षा को ज्यादा ही साधारण लगती है या यहाँ पर विशेष उदाहरण है अगर प्रभु भोज का प्रतीक बांटा जाता हो और आप संदेश लिखते या फुसफुसाते या वीडियो गेम खेल रहे हो या कुछ भी करके अपने आप को विशेष आत्मिक भोजन से इनकार करते हैं आप अपने आत्मिक जड़ों की सेवा करते और अपने आप को पथरीली भूमि की ओर ले जाते हैं। आप अपने आप को जब आप मुसीबत जैसे अकेलापन खतरों या उपहास का सामना कर रहे होते हैं छेदकर मुरझा दूर करते हैं। यह वयस्कों पर भी लागू होता है। आत्मिक जड़ों को नष्ट करने वाली अन्य दूसरी संभावनाएं भी है हाल की वृद्धि करती तकनीकियां परंतु ये इतनी अनोखी नहीं है। ये सुसमाचार या गिरजा को देखने का नजरिया है। ये सीमित झेलक कुछ विशेष सिद्धांत या वास्तविकता या मार्गदर्शक की कमजोरी और सुसमाचार योजना की परिदृश्यता को नजरअंदाज कर अनुभव कराता है और व्यक्तिगत और जातिवाद उसके फल होते हैं। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकले ने इस सूक्ष्मतरी BYU की दर्शकों की राजनीति के कमेंटेटरों की A flame with indignation हाल ही की खबर की घटना में विषय में बतलाया था। कला के अध्ययन के साथ उन्होंने निंदा और क्रोध को खटाई में डाला था। वास्तविकता में उन्होंने समाप्त किया, ये युग और जगह उपहारित भोले भालों की है। विपरीत में सुसमाचार में सुरक्षित होकर जुड़ना हमें सीमित और आलोचना में नाप तोल करके और परमेश्वर की शानदार कार्य को देखने के लिए हमें खोज करते रहना चाहिए। यीशु ने सिखाया कि कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। उसने समझाया कि ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। ये सच में हम सभी के द्वारा ध्यान देने वाली चेतावनी है। मैं सबसे पहले धन के धोखे पर बोलूंगा। जहां कहीं भी हम अपनी आत्मिक यात्रा में हैं, कुछ भी आपका परिवर्तन होने का स्तर हो, हम सभी इसके द्वारा लोभित होते हैं। जब स्वभाव या प्राथमिकता उपलब्धि प्रयोग या धन संपत्ति पर स्थिर होती है, हम उससे जुड़े जाते हैं। बहुत कुछ कहना है और जड़वाद के विषय में लिखना है, इस सूक्ष्म को यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता है। वे जो धर्म विज्ञान में जिसकी समृद्धि कहा जाता है में विश्वास करते हैं, वो धन का धोखा से सफर करते हैं। धन संपत्ति की ऐश्वर्य या विशेष आय स्वर्गीय समर्थन का प्रमाण नहीं होता और उसका न होना स्वर्गीय असमर्थन होता है। जब यीशु ने विश्वासी अनुयायी को बतलाया था कि तुझे अनंत जीवन मिलेगा यदि तू अपना सब कुछ कंगालों को दे दे, उसने धन संपत्ति में कोई बुराई नहीं देखी थी, परंतु बुराई उस अनुयायी के स्वभाव में थी। जैसे हम सब जानते हैं, यीशु अच्छे सामरी की प्रशंसा करते हैं जिसने वही चंद सिक्कों से उसके साथी की सेवा की थी। उसी का उपयोग कर यहूदा ने उसे धोखा दिया था। सारी बुराइयां उसी जड़ धन नहीं होता, अपित धन से प्रेम होता है। मॉर्मन की पुस्तक एक समय बताती है जब परमेश्वर का गिरजा अपनी प्रगति में असफल होना शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों का गिरजे की शुरुआत उनके मन सांसारिक धन संपत्ति पर लगा हुआ था। जिस किसी के पास भी सांसारिक वस्तुएं बहुतायत से हैं, वे नाशे में हैं। वह आत्मिक तौर से संसार की दूसरी चीजों और संपत्ति के द्वारा खतरे में है। यही स्वाभाविक परिचय है उद्धारकर्ता की अगली शिक्षाओं का। सबसे कठिन कांटा सुसमाचार के शब्दों के प्रभाव से हमारे जीवनों में सांसारिक तथ्यों से बाहर निकालता है कि यीशु इसे कहते हैं, होते होते ये चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। यह स्मरण करने के अनेक हैं, कुछ उदाहरणों को आगे जोड़ा गया है। एक अवसर पर यीशु ने अपने श्रेष्ठ शिष्य को फटकारा था। पतरस से कहा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्यों की बातों पर लगाने का अर्थ है इस संसार की बातों की चिंता करना, परमेश्वर की बातों से, अपने कामों से, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी सोच से आगे रखना। इस जीवन के सुख विलास में फंस जाते और उसके सामने हम घुटने टेकते हैं, जब हम आदी हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर की बहुमूल्य आजादी का उपहार को कम कर देता है, जब हमें मामूली सा मन बहलावे द्वारा छल लिया जाता है, जब हम अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण बातों से परे ले जाते हैं और जब हमारे पास मानसिक अधिकार होता है जिससे हमारी व्यक्तिगत प्रगति की आवश्यक योग्यता को हमारे अनंत नियति के लिए भंग करता है। हम इस जीवन की चिंताओं से उभर जाते हैं जब हम भविष्य में भय के द्वारा शक्तिहीन हो जाते हैं, जो हमें विश्वास में आगे बढ़ने से परमेश्वर में और उसके वादों पर भरोसा करने में बाधा डालता है। 25 साल पहले मेरे BYU के माननीय शिक्षक W. निम्ले संसार के बातों से घिरे होने के खतरे पर बोले थे। उनसे एक साक्षात्कार में पूछा गया था, क्या सांसारिक परिस्थितियां और हमारे कर्तव्य सुसमाचार को फैलाने के तरीकों को इच्छापूर्वक खोजते हैं, संसार को रहने के अनुकूल बनाए जैसे हम गिरजाघर में करते हैं। वो जवाब देता, यही गिरजाघर की संपूर्ण कथा है, क्या ये नहीं है? यहाँ पर आपके पास अपमानित होने के इच्छुक होते हैं, आप यहाँ पर खतरा उठाने के इच्छुक होते हैं। वहीं से जहाँ से विश्वास अंदर आता है, हमारी वचनबद्धता लगभग एक परीक्षा है, ये लगभग कठिन है। इस संसार के लगभग अव्यवहारिक विकल्प अनुसार इस सुसमाचार की प्राथमिकता को BYU कैंपस में कुछ महीनों पहले दृढ़ता के साथ कैथोलिक मार्गदर्शन चार्ल्स जे चैटपट आग विश्व फिलाडेल्फिया के द्वारा कहा गया था। चिंताओं के बारे में बोलते हुए LDS और कैथोलिक समाजों ने बांटा, जैसे कि विवाह और परिवार का विषय, हमारे लैंगिकता की प्रवृत्ति, मानव जीवन की पवित्रता और धर्म आजादी की आवश्यकता। वे कहते हैं, मैं दोबारा से बल देता हूँ, वास्तविकता में जीने का महत्व जिस पर हम दावा करते हैं कि हमें विश्वास है, इसी प्राथमिकता की जरूरत है, न कि सिर्फ हमारे व्यक्तिगत और परिवार की जिंदगियों में, पर बल्कि हमारे गिरजों में, हमारी राजनीति चुनाव में, हमारे व्यवसाय की रीतियों, दीनों की उपचारों में, दूसरे शब्दों में सब कुछ हम जो करते हैं। यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों है, वो जारी रखता है। कैथोलिक अनुभवों से सीखते हैं, हम कैथोलिक विश्वास करते हैं, हमारी छुट्टी समाज में प्रभावित करती है, लेकिन वहाँ समाज में होकर रहना और समाज द्वारा सहते रहना के बीच एक चीनी सी रेखा होती है। उद्धारकर्ता की चेतावनी इस संसार की चिंताओं से, परमेश्वर के वचनों से, हमारे जीवनों की वास्तविक चुनौतियों से, हमें हमारी प्राथमिकताओं को रखने से, हमारे हृदय बनाए रखने, परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके गिरजा के मार्गदर्शक पर रहने के विरुद्ध है। उद्धारकर्ता के उदाहरण हमें इस दृष्टांत को सोचने के कारण हो सकते हैं, जैसे मिट्टी का दृष्टांत। मिट्टी की काबिलियत हम में से प्रत्येक के हृदय पर जो सुसमाचार के बीच में प्रति खुले हो निर्धारित होती है। आत्मिक शिक्षाओं की संवेदनशीलता में कुछ हृदय कठोर और तैयार नहीं होते हैं, कुछ हृदय पत्थर की तरह जटिल और कुछ सांसारिक बातों के ऊपर लीन होते हैं। बोलने वाले का दृष्टांत की समाप्ति उद्धारकर्ता के इस बीज के वर्णन, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी और फल लाए में विभिन्न मापदंड के साथ होती है। हम कैसे वही अच्छी भूमि वैसे ही अच्छे फल के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले ही उत्तम मन संभालते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हमारे पास सुसमाचार का बीज है, प्राथमिकताओं को रखना ये हम सब के ऊपर है। कुछ ऐसा करें कि हमारी मिट्टी अच्छी और हमारा फल बहुतायत से हो। हमें जड़ को मजबूती से पकड़े यीशु मसीह के सुसमाचार में बढ़ते जाना है। हम इसे परिवर्तन प्रार्थना द्वारा, धर्मशास्त्र अध्ययन द्वारा, सेवा द्वारा पाते हैं और प्रभु भोज नियंत्रण लेते रहना, आत्मा सदैव हमारे साथ रहेगी। हमें हृदय में महान परिवर्तन की खोज करते रहना चाहिए कि बुरी कामनाओं व स्वार्थीपन की चिंताओं को परमेश्वर के प्रेम के साथ और उसकी उसके बच्चों की सेवा करने की इच्छा में बदलना है। मैं इन सब बातों की सच्चाई की गवाही देता हूँ, मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता हूँ, जिसकी शिक्षाएं रास्ता दिखाती हैं और जिसके प्रयासचित ये सब संभव करता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
पिछली जनवरी में 7 वर्ष की सेलर गुड सेलर और उसका परिवार फ्लोरिडा से इलिनॉय की एक और विमान में उड़ रहे थे। सेलर के पिता नियंत्रण के पास थे। जैसे ही रात हुई, विमान में तकनीकी खराबी हुई और वह केंटकी की घोर काली पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक बड़े ही खुरदरे मैदान में उल्टा गिरा। हर कोई उस दुर्घटना में मारा गया सिवाय सेलर के। उसकी कलाई दुर्घटना में टूट गई थी। उसे कटने और खरोंच का सामना करना पड़ा था। उसने जूते भी खो दिए थे। तापमान 38 डिग्री फारेनहाइट 3 डिग्री सेल्सियस था। वह एक ठंडी केंटकी की सर्दी की बरसात रात थी और सेलर ने केवल शॉर्ट्स, एक टी शर्ट और एक जुराब पहनी हुई थी। वह अपने माता पिता के लिए रोने लगी, परंतु किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। अपने हौसले को हर कण से इकट्ठा कर वह नंगे पैर मदद के लिए ग्रामीण क्षेत्र की ओर चल पड़ी। पानी की सकरी पहाड़ियों से होकर, खाड़ियों को पार कर और बहादुरी से जामुन की कटीली झाड़ियों से होकर, एक छोटी पहाड़ी की चोटी से सेलर को दूर जाती एक ज्योति देखी। करीब एक मील दूर से अंधेरे से लड़खड़ाते हुए और ज्योति की ओर बढ़ते हुए वह आखिर में एक भले पुरुष के घर पहुंची, जिससे वह पहले कभी मिली नहीं थी, जिसने उसकी देखभाल की। सेलर सुरक्षित थी। वह जल्द ही अस्पताल में ले जाई जाने वाली थी और उसकी मदद की जानी थी। इस शोकजनक घटना से उभरने की उसकी, जिसमें से हमें कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो चोटी थी वह यह कल्पना करना मुश्किल है कि कैसे उस रात सेलर वह सब करने में कामयाब हुई जो उसने किया, परंतु हम ये जानते हैं कि उसने उस दूर की घर की ज्योति से अपने बचने की संभावना को पहचाना। वह आशा थी। उसने इस सत्य में साहस दिखाया कि चाहे चीजें कितनी भी बुरी हों, उसका बचाव उस ज्योति में ही पाया जाएगा। हम में से कुछ ही कभी सेलर जैसे खौफनाक अनुभव को सहन कर पाएंगे, परंतु हम में से सबको कोई समय या अन्य पर खुद से ही अपने आत्मिक जंगल को पार करना होगा और हमें अपनी उबड़ खाबड़ भावुक यात्राओं का पीड़ा उठाना होगा। उन क्षणों में कितना भी अंधेरा या निराशाजनक जैसे वे प्रतीत हो, यदि हम उसे ढूंढे, वह हमेशा एक आत्मिक ज्योति है जो हमें संकेत देगी, हमें बचाव और राहत की आशा देगी। वह ज्योति सारी मानवता के उद्धारकर्ता से प्रकाशित होती है, जो कि संसार की ज्योति है। आत्मिक ज्योति को समझना शारीरिक ज्योति को देखने से अलग है। उद्धारकर्ता की आत्मिक ज्योति को पहचानने की शुरुआत हमारे विश्वास करने की इच्छा से होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम आरंभ से कम विश्वास करने की आकांक्षा रखें। यदि तुम अपने मन की शक्ति को जगाओगे और उभारोगे और कर्ण मात्र भी विश्वास करोगे, भविष्यवक्ता अल्मा ने सिखाया, यदि तुम उस पर विश्वास करने की केवल इच्छा को अपने अंदर से तब तक रहने देना होगा जब तक कि तुम इस प्रकार विश्वास करने लोगों की तुम मेरी बातों के एक अंश को स्थान दे सको। अल्मा हमें बुलाता है कि हम विश्वास करने की इच्छा करें और अपने मनों में स्थान दें, जो हमें उद्धारकर्ता के वचनों को याद दिलाते हैं कि आस्था और विश्वास को हमारे व्यक्तिगत चुनाव और कार्य की आवश्यकता है। हम अपने मन की शक्ति को जगाना उभारना चाहिए। हम मांगते हैं इससे पहले कि हमें मिल जाए, हम खोजते हैं इससे पहले हम पाएं, हम खटखटाते हैं इससे पहले कि हमारे लिए खोला जाए। हमें फिर से वादा किया जाता है, क्योंकि जो भी मांगता है उसे मिलता है, जो भी कोई खोजता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हमें विश्वास करने की भावातिष्ट दलील और कोई खुद से खुद उदारकर्ता से आई है, जब उन्होंने अपनी सांसारिक सेवा के दौरान अपने अविश्वासी श्रोताओं से आग्रह किया, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं कर रहा हूँ तो मेरा विश्वास ना करो, किंतु यदि तुम में विश्वास नहीं रखते तो उन कार्यों में भी विश्वास करो और जान सको कि परमपिता मुझ में है और मैं परमपिता में। जो विश्वास करने को चुनते और उसका और सुसमाचार की ज्योति को अपने अंदर बढ़ने देंगे, हम इनकार कर देंगे कि विश्वास को अकेले अंधेरे में सफर करने हट करेंगे। जो विश्वास करने को चुनते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनके जीवन का मार्गदर्शन उद्धारकर्ता की ज्योति समस्या स्नात से करते हैं। दुर्घटना के बाद सेलर के पास चुनाव था। वह हवाई जहाज के पास अंधेरे में अकेले में डर से रहने को चुन सकती थी, परंतु आगे एक लंबी रात थी और ठंड बढ़ती ही जाती थी। उसने एक अलग रास्ते को चुना। सेलर पहाड़ी पर चढ़ी ताकि वह सीमा को देख सके। धीरे धीरे जैसे सेलर ने अपना मार्ग रात के माध्यम से ज्योति की ओर बनाया, वह उज्जवल होता गया। फिर भी ऐसे भी क्षण रहे होंगे जब वह ना दिखी हो। शायद वह अपने दृष्टिकोण से ओझल हो जब वह किसी गड्ढे या पेड़ या झाड़ियों में ही, परंतु वह बढ़ती गई। जब भी वह ज्योति को देख सकती, उसके पास सबूत होता कि वह सही मार्ग पर है। वह निश्चित रूप से अब तक यह नहीं जानती थी कि वह ज्योति क्या थी, परंतु वो जो जानती थी उसके आधार पर वह उसकी ओर चलती रही, विश्वास करते हुए कि वह उससे फिर से देखेगी यदि वह इसी दिशा में चलती रही। ऐसा करने से उसने अपने जीवन को बचा लिया। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। ऐसे भी समय होंगे जब हमें चोट लगी हो, जब हम थके हों और जब हमारा जीवन निथरे और ठंड से भरा लगे। ऐसे भी समय होंगे जब हमें कोई ज्योति सीमा पर ना दिख रही हो और हमें समर्पण करने जैसा महसूस हो। यदि हम विश्वास करने के इच्छुक हैं, यदि हम इच्छा रखें विश्वास करने की, यदि हम विश्वास करने को चुने, तब हमें उद्धारकर्ता की सीख और उदाहरण आगे का मार्ग दिखाएंगे। जैसे कि सेलर को विश्वास करना था कि वह उस दूर की ज्योति से कोई सुरक्षित स्थान को ढूंढ निकालेगी, ऐसे में चुनना है उद्धारकर्ता की दिव्य सच्चाई और उसकी अनंत ज्योति की ओर अपने मनों को खोलना है। हर युग के पार भविष्यकर्ताओं ने हमें प्रोत्साहित किया है और हमें विश्वास करने की विनती भी की है। उनकी सीख मूल सिद्धांत की सच्चाई पर आधारित है। परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए दबाव नहीं डालते, बजाय इसके कि वे हमें आमंत्रित करने के लिए अपने जीवन जीवित भविष्यवक्ताओं और प्रेतों को हमें सिखाने के लिए भेजते हैं। धर्मशास्त्रों को उपलब्ध कराओ अपनी आत्मा द्वारा हमें संकेत देकर। हम वे हैं जिन्हें हम उन आत्मिक नियंत्रण को पहचानना है। चुनाव से अपनी अंदरूनी आंखों से आत्मिक ज्योति को देखें जिसे हमें वो पुकारता है। विश्वास करने का निर्णय हमें आवश्यक चुनना है। जो हम जो भी करते हैं वह हमें सभी दूसरे निर्णय को आकार देता है। परमेश्वर हमें विश्वास करने को विवश नहीं करता। कभी अधिक विवश करने पर हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी है, परंतु उसकी संपूर्ण इच्छा हमें आशीषित करने की है। तथापि उसकी बिलावट हमें उसमें पावित विश्वास करने की, अभ्यास करना उन विश्वास के कर्ण का और उनके वचनों को स्थान देना आज भी लागू है। जैसा कि उद्धारकर्ता ने कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि पिता हर स्थान के लोगों को पश्चाताप करने और मुझमें विश्वास करने की आज्ञा देता है। विश्वास और गवाही है और आस्था निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। वे हमें ऐसे ही नहीं हो जाते। विश्वास ऐसी चीज है जिसे हम चुनते हैं। हम उसकी आशा करते हैं, हम उसके लिए कार्य करते हैं, हम उसके लिए बलिदान भी करते हैं। हम अकस्मात ही उद्धारकर्ता में विश्वास करने लगेंगे, उसके सुसमाचार में किसी से अधिक ना अकस्मात प्रार्थना और दशमांश देंगे। हम सक्रिय रूप से विश्वास करने को चुने, जैसे कि हम दूसरे आज्ञाओं को करने के लिए चुनते हैं। ऐसा ही सच गवाही और विश्वास के लिए है। सेलर को पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। जैसे कि उसने झाड़ियों से अपने मार्ग की ओर निकलते हुए सोचा ना था कि वह काम कर जाएगा। वह खो गई थी, वो घायल हुई, अंधेरा और ठंड भी थी।
Once she had seen it, she did her best to move toward it, remembering what she had seen.
जो उसने देखा था, वह अपनी पूरी कोशिश उसकी बढ़ती गई, वह याद रखते जो उसने देखा था। Rather than choosing to doubt, our actions are the evidence of our belief and become the substance of our faith. हम विश्वास को न चुन रहे हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं। हम साबत के दिन को पवित्र रखते हैं जब हम अर्चना करते हैं, मंदिर में और धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं। हम विश्वास करने को चुनते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु भोज को लेते हैं। कभी हार ना मानो। कभी कभी आत्मिक चीजों में प्रगति धीमा या रुक रुक कर होती है। कभी कभी हमें ऐसा स्पर्श होगा कि हमने मैदान हार दिया है और हमारे सबसे अच्छे प्रयास भी उद्धारकर्ता के करीब जाने के काम नहीं कर रहे। उनको जिन्हें ऐसा महसूस होता है, कृपया कभी हार ना माने कदापि। सीधे उसमें विश्वास करते जाए और उसके सुसमाचार में और उसकी किरचे में अपने कार्यों को, अपने विश्वास को उसके सम्मिलित करें। उन क्षणों में जब आपका विश्वास धीमा पड़ जाए, उद्धारकर्ता को, उसके सुसमाचार को और उसके गिरजे को संदेह का लाभ दें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपने सबसे अच्छा चुनाव किया है जो आप संभवतः कर सकते थे। आपका विश्वास करने का निर्णय आपको असीमित और हमेशा की आशीष देगा.
Your courageous decision to believe in Him will bless you immeasurably and forever. The blessings of belief.
विश्वास की आशीषें. चाहे हमारी चुनौतियां बड़ी हों, जैसे कि सेलर की थी, या महज हर रोज के जीवन को समान उतार चढ़ाव हो, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करना एक अनमोल आशीष है. जब हम उसमें विश्वास और उसका अनुसरण करते हैं, हमें खुशी और शांति से पुरस्कृत किया जाता है. हमारी समझ और गहरी होती है और क्षमता बढ़ती जाती है. जैसे कि वर्ष बीतते हैं, मेरा अनुभव और अनुभव उन अनगिनतों का जिनमें मैं संसार से मिला हूँ पुष्टि करते हैं कि उद्धारकर्ता में विश्वास उन आशीषों को जिसके वे समय के साथ और भी धनी अधिक संतोष बने. उनमें विश्वास करने को चुनना और उसके उद्धार का कार्य ही सच्चा मार्ग है. इस संसार में शांति और अनंत जीवन वाले संसार में मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह प्रकाश का स्रोत और हम सब की आशा है. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उस विश्वास को चुने यीशु मसीह के नाम में. आमीन.
We thank all who have participated and expressed
लिए का मोहक संगीत के लिए और उन सभी वार्ताकारों का कृतज्ञता के साथ आभारी हैं जो उन्होंने इस सुबह हमें प्रस्तुत किया है. इस अधिवेशन के हमारे अंतिम प्रवक्ता एल्डर एल थम पेरी 12 प्रेरित के प्रतिशत से उनके टिप्पणी के बाद इस सभा की संपत्ति समाप्ति में गायक मंडली गीत गाएगी आई बिलीव इन क्राइस्ट. समापन प्रार्थना एल्डर लैरी जे एको 70 के द्वारा दी जाएगी.
पिछली नवंबर में मुझे अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग और बिशप जेरल कॉस के साथ वेटिकन रोम इटली रोम विवाह और परिवार पर एक वार्ता सम्मेलन में जाने का सौभाग्य मिला था. वहां पर 14 धर्मों और 7 में से 6 द्वीपों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. उन सबों को आज के संसार में परिवारों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अपना व्यक्त करने के व्यक्त किया गया था. पोप फ्रांसिस ने सम्मेलन के प्रथम सत्र का प्रारंभ इस कथन के साथ किया, आजकल अस्थाई संस्कृति में रह रहे हैं जिसमें से अधिक अधिक लोग पीपल के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में समर्पित हो रहे हैं. शिष्टाचार और नैतिकता इस क्रांति का समर्थन स्वतंत्रता को व्यक्त करने के रूप में किया जाता है, लेकिन असल में इसके कारण अनगिनत लोगों को आत्मिक और सांसारिक विनाश हुआ है, विशेषकर गरीब और कमजोर का. इस विनाश में इन लोगों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है. उभरती हुई पीढ़ी के लोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि वे इस भ्रष्ट धारणा के विवाह की अस्थाई है को स्वीकार ना करें, बल्कि इस धारणा का विरोध करते हुए सच्चे और स्थाई प्रेम को पाने के लिए साहसी क्रांतिकारी बने. ऐसा अवश्य ही होना चाहिए. इसके बाद 3 दिनों का प्रस्तुतिकरण और चर्चा सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसमें धर्मगुरुओं ने एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह के लिए विषय में बोला. जब मैं संपूर्ण विश्व के धार्मिक धर्मगुरुओं को सुन रहा था, मैंने उन्हें समाज की मूलभूत इकाई के रूप में विवाह की पवित्रता और पवित्र परिवारों के महत्व पर पूर्ण रूप से एक दूसरे से सहमत और एक दूसरे का समर्थन करते हुए सुना. मैंने उनके बीच समानता और एकता की एक शक्तिशाली भावना को महसूस किया. वहां बहुत से थे जिन्होंने इस एकता को देखा और व्यक्त किया था. उन्होंने ऐसा कई तरीकों से किया था. मेरा पसंदीदा तरीकों में से एक था जब ईरान के एक मुस्लिम विद्यार्थी ने हमारी प्रोक्लेमेशन ऑन द फैमिली के 2 अनुच्छेदों का 100% वैसा ही उदाहरण दिया था. सम्मेलन के दौरान मैंने पाया कि जब विभिन्न पंथ और संप्रदाय और विवाह होते हैं, विवाह और परिवार के विषय में एकमत होते हैं, वे उन मूल्यों और निष्ठा और समर्पण के प्रति भी एकमत होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक इकाइयों को संबंध रखती है. मेरे लिए देखना बहुत अद्भुत था कि किस प्रकार विवाह और परिवार पर आधारित प्राथमिकताएं किसी राजनीतिक धार्मिक मतभेदों से कहीं बड़ी थी. जब पति या पत्नी के प्रेम और बच्चों के लिए आशाएं, चिंताओं और सपनों की बात होती है तो हम सब एक हैं. विश्व घर के उद्देश्यों के साथ सबौन में उपस्थित होना शानदार था. उन्होंने विस्तार रूप से एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह के महत्व पर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया था. उनके प्रत्येक संबोधनों के पश्चात उनके धार्मिक गुरुओं ने गवाही दी थी. इस सम्मेलन की अंतिम गवाही अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग द्वारा दी गई थी. उन्होंने समर्पित विवाह और अंत परिवारों से वादा की गई आशीष के भी हमारे विश्वास का शक्तिशाली गवाही दी थी. अध्यक्ष हायरिंग की गवाही उन तीन विशेष दिनों के लिए एक परिपूर्ण आशीर्वाद थी। अब आप पूछ सकते हैं, यदि अधिकांश ने एक समान पारिवारिक प्राथमिकता और विश्वासों को महसूस किया, यदि वे सभी पंथ और धर्मनिष्ठता पूर्वक विवाह के स्वरूप में सहमत थे, और यदि सभी उस महत्व के सहमत थे जिस घरों और पारिवारिक संबंध में होना चाहिए, तो फिर हम कैसे फिर हो सकते हैं? कैसे अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर स्वयं को एक विशेष संसार से भिन्न और अलग मानता है? उत्तर इस प्रकार से है, जबकि यह देखना और महसूस करना शानदार था कि हमारे परिवारों के संबंध में शेष संसार और हमारे बीच बहुत कुछ समान है, केवल हमारे पास पुनः स्थापित सुसमाचार का अनंत दृष्टिकोण है। पुनः स्थापित सुसमाचार विवाह और परिवार की जो व्याख्या करता है वह इतने विस्तृत और इतनी उपयुक्त है कि इस पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाना चाहिए। हम विवाह और परिवार को अनंत बनाते हैं। हम विवाह की निष्ठा और पवित्रता को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि परिवारों का हमारा विश्वास और समझ पृथ्वी की रचना से पूर्व आरंभ हुआ था और यह अंततः तक जा सकता है। इस सिद्धांत को बहुत सरल, शक्तिशाली सुंदरता से रूथ गार्डनर के प्राथमिक गीत के सिखाया जाता है, फैमिलीज कैन बी टुगेदर के शब्दों में सिखाया गया है। कुछ क्षण के लिए रुकें और सोचें, पूरे विश्व के बच्चे इन शब्दों को अपनी भाषा में ऊंची आवाज से इतने उत्साह के साथ गा रहे हैं कि जिससे परिवार में प्रेम पैदा हो सकता है। स्वर्गीय पिता की योजना में के द्वारा परिवार हमेशा के लिए हो सकते हैं। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं और प्रभु ने मुझे बताया कैसे मैं परिवार के साथ हो सकता हूं। हमारे पुनः स्थापित सुसमाचार का ज्ञान परिवारों और विवाह के नए और अनंत अनुबंध पर केंद्रित है। यीशु मसीह के अंतिम दिनों के संतों के गिरजे में हम नश्वरता पूर्वक जीव में विश्वास करते हैं, जहां हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ वास्तविक और आत्मिक बच्चों के रूप में रहते थे। हम विश्वास करते हैं कि हम उसके परिवार के सदस्य थे और अभी भी हैं। हम विश्वास करते हैं कि विवाह और पारिवारिक संबंधन मृत्यु के बाद भी जारी रहते हैं। उनके द्वारा संपन्न किया गया विवाह, जिनके पास उसके मंदिरों में से करने का उचित अधिकार है, मृत्यु के बाद भी वैध रहते हैं। हमारी वैवाहिक रीतियों में जब तक मृत्यु जुदा ना करे शब्द को शामिल नहीं करती, और इसके बदले कहा जाता है समय और अनंत काल के लिए। हम यह भी विश्वास करते हैं कि मजबूत परंपरागत परिवार न केवल स्थिर समाज, स्थिर अर्थव्यवस्था और स्थिर सांस्कृतिक मूल्यों की मूलभूत इकाइयां हैं, बल्कि ये अनंतता और परमेश्वर के राज्य और शासन की भी मूलभूत इकाइयां हैं। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग के संगठन और शासन परिवारों और विस्तृत परिवारों से बनाया जाएगा। हमारे इस परिवार की धारणा के कारण, विश्वास की धारणा के कारण कि विश्वास और परिवार अनंत हैं, हम एक गिरजे के रूप में इन्हें मजबूत करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों का नेतृत्व करना चाहते हैं और इसमें भाग लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो सक्रिय रूप से धार्मिक है, केवल वही सदृढ़ रूप से विवाह के मूल्यों और प्राथमिकताओं और मजबूत पारिवारिक रिश्तों में सहभागी नहीं होते। बहुत से धर्मनिरपेक्ष लोगों ने जान लिया है कि समर्पित विवाह और पारिवारिक जीवन शैली अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक लाभप्रद और अत्यधिक सुखी जीवन जीने का तरीका है। कोई भी इतने अधिक कुशल तरीके के साथ अगली पीढ़ी का उत्थान नहीं कर पाया है जितना कि एक ऐसा परिवार जिसमें फैमिली को जीत रहते हैं। क्यों सभी के लिए विवाह और परिवार महत्वपूर्ण है? जनपद सर्वेक्षण दिखाता है कि प्रत्येक वर्ग आयु वर्ग में विवाह एक आदर्श और आशा है। वर्तमान पीढ़ी के बीच जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वे विवाह करने के स्थान पर अविवाहित रहना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना विवाह के एक साथ रहना चुनते हैं, फिर भी तथ्य यह है कि दुनिया भर में बहुत से लोग अभी भी बच्चे पाना और मजबूत परिवार पाना रहना चाहते हैं। एक बार जब हमारा विवाह हो जाता है और हमारे बच्चे हो जाते हैं, तब सभी मानव जाति के बीच वास्तविक समानता अधिक स्पष्ट हो जाती है। परिवार वाले बेशक हम कहीं भी रहते हो या किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, हमारे पास एक समान संघर्ष, एक समान समझौते, अपने बच्चों के लिए एक समान आशाएं, चिंताएं और सपने होते हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स लेखक डेविड ब्रूक्स ने कहा था, लोग उस समय बेहतर जीवन व्यतीत नहीं करते हैं जब उन्हें वैसा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है जैसा वे चाहते हैं। उनका जीवन तब बेहतर होता है जब वे व्यक्तिगत पसंद को उच्च प्राथमिकता देने के स्थान पर जिम्मेदारियों से बंधे रहते हैं, जैसे परिवार, परमेश्वर, रोजगार और देश की जिम्मेदारियां। एक समस्या है, मीडिया और मनोरंजक दुनिया वो दिखाती है, उसमें अधिकांश लोगों की प्राथमिकता और मूल्यां नहीं दिखाया जाता। कारण कोई भी हो, हमारे टेलीविजन, सिनेमा, संगीत और इंटरनेट में अल्पमत के लोगों की समस्या को बहुमत का बखौटा लगाकर दिखाया जाता है। अनैतिकता और नैतिकता का अभाव, अत्यधिक हिंसा से लेकर मनोरंजक सेक्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे ये एक सामान्य बात हो। हम में से वे जिनके पास पारंपरिक विचारधारा महसूस करते हैं कि हम पुराने ख्यालों के हैं या हम पुराने जमाने के लोग हैं। एक ऐसा संसार जहां मीडिया, इंटरनेट हावी रहता है, वहां जिम्मेदार बच्चों का को पालना और विवाहों के परिवारों का बंधे रखना कठिन होता है। बेशक मीडिया या अन्य मनोरंजक माध्यम कुछ भी दिखाते हो, चाहे कुछ लोगों में विवाह करने और विवाह होने की इच्छा कम हो, फिर भी बहुत से लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होना चाहिए। वे विवाह में वफादारी पर विश्वास करते हैं। और विवाह में ली गई शपथ बीमारी और तंदुरुस्ती और जब तक मृत्यु हमें जुदा ना करे पर विश्वास करते हैं। हमें कभी कभी स्वयं को स्मरण कराना चाहिए, जैसे मुझे रोम में इस शानदार, आश्वस्त और दिलासा देने वाले तथ्य से अवगत कराया गया था कि अभी भी बहुत से लोगों के लिए परिवार और विवाह एक लक्ष्य और आदर्श होता है, और इनकी धारणाओं को मानने वाले हम अकेले नहीं है। नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत रूप में उचित तालमेल रखना कभी भी इतना अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं रहा था जितना हमारे समय में है। एक गिरजे के रूप में हम मजबूत विवाह परिवारों का निर्माण करने के लिए हर संभव सहायता देना चाहते हैं। इसलिए गिरजा परिवार को मजबूत करने के प्रयासों के लिए विभिन्न समुदायों में सक्रिय रूप से भाग लेता और मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम परिवारों पर केंद्रित मूल्यों को मीडिया और अन्य सामाजिक माध्यम से बांटते हैं। इसलिए हम सभी राष्ट्रों के साथ वंशावली और विस्तृत पारिवारिक इतिहास बांटते हैं। हम चाहते हैं उन सभी झूठी और वैकल्पिक जीवन शैलियों के विरोध में हमारे सिद्धांतों को सुना जाए जो कि उस पारिवारिक संगठन का स्थान लेने का प्रयास कर रही है जिसे परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया था। हम यह भी चाहते हैं कि जो खुशी और संतोष पारिवारिक परिवार लाते हैं उसके समर्थन में हमारी आवाज को सुना जाए। हमें अपनी अभिव्यक्ति को संसार भर में दर्शाना जारी रखना चाहिए कि क्यों विवाह और परिवार इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों विवाह और परिवार इतने मायने रखते हैं और क्यों ये सदा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पुनर्स्थापित सुसमाचार विवाह और परिवार पर केंद्रित है। यह विवाह और परिवार है जहां हम दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ अधिक जुड़ सकते हैं। यह विवाह और परिवार है जहां हम शेष विश्व के साथ अपनी महानतम समानताएं पाते हैं। यह विवाह और परिवार है जिसमें अंतिम दिनों के संत यीशु मसीह के गिरजा को पवित्र पर पर्वत पर ज्योति होने का महानतम मौका मिलता है। मैं गवाही के साथ समाप्त करना चाहता हूं और इस पृथ्वी पर 9 दशकों का मेरा जीवन मुझे यह कहने के लिए संपूर्णता से योग्य बनाता है कि जितना अधिक मैं वृद्ध होता जा रहा हूं उतना ही अधिक मैं महसूस करने लगा हूं कि परिवार ही जीवन का केंद्र है और अनंत जीवन की खुशी है। मैं अपनी परिवार का, अपने बच्चों का, अपने नाती पोतों का और अपने पड़ नाती पोतों का, अपने सभी चचेरे भाइयों बहनों रिश्तेदारों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे स्वयं के जीवन को इतना आनंदित बनाया और हां आनंद भी इस अनंत सच्चाई की मैं यीशु मसीह के नाम में अपनी सबसे मजबूत और अति पवित्र गवाही देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
I believe in Christ. Our dear Heavenly Father,
हमारे स्वर्ग के पिता, हम नम्रता के साथ आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उद्धार की योजना के लिए धन्यवाद देते हैं, और खासकर और हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के लिए और उनके प्रायश्चित के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन और सारे प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के लिए हम आपका प्रेयर करते हैं कि उनकी समर्थन के लिए और उनकी आशीषों के लिए हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर, उनके संदेशों के लिए जो आज हमने सुना है। जैसे हम जाते हैं इस अधिवेशन के लिए, हम आपसे मांगते हैं कि आपकी आत्मा हमारे साथ रहे और जो हम करते हैं, हम ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।
This has been a broadcast of the 100.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का प्रथम सत्र 185th आर्थिक वर्ष महासम्मेलन था। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया। संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया था। इसका प्रसारण बॉनीवुड डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।